से चल चल बादलों में चल भर के उड़ाने आसमानों में FM Gold खरा सोना आकाशवाणी
FM Gold खरा सोना।
नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की FM गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम छूलो आसमान में आपसे रूबरू होंगे क्रिसेंडो म्यूजिक और प्रोडक्शंस के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुरेश थॉमस। इनसे बातचीत करेंगे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज एवं इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टरसेन।
हमारे साथ आज सुरेश थॉमस जी हैं, CMD हैं क्रिसेंडो म्यूजिक। इनकी पूरी जिंदगी गई है म्यूजिक में, तो आज अपने म्यूजिक की तरफ चल रहे हैं। मैं हूं विकास मित्तरसेन, चेयरमैन नजारा टेक्नोलॉजीज। सुरेश जी, भैया बताइए, आपकी अर्ली लाइफ में आप म्यूजिक में आए कैसे? आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आप अपना खुद का इंटरेस्ट था ये?
नहीं, आई थिंक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन डिफेंस परिवार में।
अच्छा।
पैदा हुआ हूँ और मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब यू नो क्या कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिटी में ही था। सो मेरे पेरेंट्स भी बहुत यू नो म्यूजिक वो बहुत पसंद करते थे। माय मदर वो चर्च में गाती थी, माय फादर एयर फोर्स ऑफिसर थे। अच्छा। मगर हमेशा घर पे म्यूजिक बजता था, हिंदी गाने एज वेल एज इंग्लिश गाने। वो तो बहुत बड़े सैगल के बहुत बड़े फैन थे। ओके। सो बचपन में हम वी यूज टू सी लॉट ऑफ हिंदी मूवीज, यू नो पुराने हिंदी मूवीज 70s, 60s, 70s में। सो काफी म्यूजिक का एक्सपोजर था उस टाइम। जब मैं कॉलेज में आया तो लॉट ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक यू नो मैं सुना करता था, थोड़ा गिटार भी बजा लेता था, तो मैं खुद गाया करता था बट नॉट प्रोफेशनली। तो म्यूजिक का इंटरेस्ट तो हमेशा था बचपन से ही।
तो आपकी शुरुआत हुई कैसे बिजनेस में, या आप जब कॉलेज कौन से कॉलेज से आ रहे हैं?
किरोनीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
अच्छा, आप दिल्ली में थे?
हाँ।
और बॉम्बे के नहीं है?
नहीं नहीं, स्कूलिंग और कॉलेज दोनों दिल्ली में ही हुआ था। यहाँ पे अपना फर्स्ट जॉब नौकरी जो टाटाज में था, मिस्टर रतन टाटा के साथ।
ओके।
मैं काफी क्या कहते हैं प्रिविलेज्ड हूँ कि उनके साथ मेरा पहला नौकरी उन्हीं के साथ था,
डायरेक्टली अंडर हिम।
हाँ, डायरेक्टली अंडर हिम। मैं उसका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था। तो फर्स्ट टू इयर्स मेरा दो अपने उनके बॉम्बे हाउस में आई वाज वर्किंग। एक्चुअली उन्हीं के वजह से मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुआ। मैंने एक फंक्शन में उसे दिल्ली में मिला इनफॉर्मली, वहां पे हम बात करना शुरू किए थे। इट वॉज माई थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में, मेरा पढ़ाई भी खत्म नहीं हुआ था उस टाइम। तो उसने यू नो ही गेव मी एन ऑफर कि पढ़ाई के बाद अगर आप बॉम्बे में आना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। तो और उनका भी बहुत इंटरेस्ट था म्यूजिक में। तो एक्चुअली जब हम दोनों बात करना शुरू किए तो वो भी म्यूजिक के बारे में ही बात कर रहे थे। सो आई थिंक इस वजह से हम दोनों यू नो अपनी दोस्ती बन गई, यू कैन कॉल इट दैट। ऑफ कोर्स वो बहुत सीनियर है, बट उसने मुझे ये ऑफर दिया और तब मैं आ गया बॉम्बे।
तो बहुत फॉर्चुनेट ब्रेक होता है। आई मीन
बिल्कुल,
आप अप्लाई कर करके थक जाओ, जॉब नहीं मिलते ऐसे जगहों में।
बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दोस्त उन दिनों में, हम सब थर्ड ईयर स्टूडेंट्स थे कॉलेज में, यू नो समवन वाज ट्राइंग MBA एंट्रेंस एग्जाम्स, यू नो मैनेजमेंट ट्रेनीज के जॉब्स के एप्लीकेशंस दे रहे थे उन दिनों में। मैं अभी 30-35 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। सो सब लोग बहुत परेशान थे और मैं हमेशा एक हैप्पी गो लकी इंसान था उन दिनों में भी। मैं ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, मगर चलो पास हो जाता था, थिंग्स वर ओके। मगर आई वॉज नेवर ये करियर ओरिएंटेड इतना था ही नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, यू नो। तो माँ बाप भी बहुत परेशान थे, बट लकीली मुझे फैंटास्टिक जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसे ही सामने आ गया। एंड मेरे कॉलेज बिल्कुल खत्म होने के बाद ही आई मूव टू बॉम्बे, एंड देन मैं बॉम्बे हाउस में काम करना शुरू किया। पहले ट्रेनी था, देन फॉर टू इयर्स एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था। इट वाज वेरी गुड एक्सपोजर उन दिनों में। GRD टाटा जिंदा थे, नवल टाटा सब थे वहां पे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था यू नो टू लुक एट अ कॉर्पोरेट कंपनी दैट टू एक बहुत ही एथिकल कंपनी, ओके, एथिकल लोग, तो मैं काफी सीखा वहां पे। काफी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाना, यू नो जापानीज और रशियंस के साथ डील करना। तो मैं बच्चा ही था, यू कैन से मेरा उम्र 20-21 का ही था उस टाइम। फिर भी जो एक्सपोजर मुझे मिला वहाँ पे बहुत जल्दी यू नो वो असर मेरा मैच्योरिटी बहुत जल्दी बढ़ गया यू नो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और मैंने काफी कुछ सीखा वहाँ पे उस टाइम।
अभी भी कभी मिलते हैं रतन जी?
अभी कभी रेयरली, क्योंकि वो भी बहुत बिजी हो गए हैं एंड मैं भी बिजी हूँ। हाँ, मगर आई थिंक एक या डेढ़ साल पहले आई मेट हिम एट अ वेडिंग एंड वहाँ पे भी बहुत यू नो सालों के बाद में मिल रहा था. इट वाज वेरी वार्म, बहुत ही वही उनका नेचर ऐसे ही है यू नो. बहुत प्यारे तरीके से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सबको देते हैं, अपना ड्राइवर को भी देते थे, कोई भी उनके एम्प्लॉयज हो, कोई भी हो, ही जेआरडी टाटा, सब उनका नेचर ऐसा ही था.
अब ये गाना सुन ले, आपकी कोई खास पसंद ही?
वेल मैं तो उस जमाने का हूँ वेर वी यूज्ड टू लिसन टू आर डी बर्मन, किशोर कुमार, तो यू नो 60s 70s के गाने हमें पसंद है. तो अगर आप उसमें से कुछ चुनना चाहते हैं यू कैन प्ले व्हाटएवर यू लाइक.
यहाँ पे तो सारा पूरा भंडार है गानों का, जो बोलेंगे वो बच जाएगा.
बिल्कुल बिल्कुल. पहले तो हम गाना ऑल इंडिया रेडियो पर ही सुनते थे बिफोर ऑल दीज प्राइवेट एफ एम स्टेशन केम एंड यू नो डिजिटल जमाना आने से पहले सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो था और दूरदर्शन था, इन्हीं दो चीज जगह हम म्यूजिक सुनते थे.
उस टाइम में ना एक हर मंगलवार अमीन सियानी का एक रिकॉर्ड
हम सब तुम सुनते थे
एक घंटे का,
या
मोस्ट फेवरेट था हमारा.
हाँ वो भी हम सब सुनते थे बैठ के, रेडियो ऑन करके वहीं पे बैठ के सब सुनते थे. बिना का गीत माला,
बिना का गीत. करेक्ट करेक्ट.
तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन, थम गया जाने मन जाने जान. तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन, थम गया आसमान. जाने मन जाने जान. तुमने मुझे देखा के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते. मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जान. तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन, थम गया आसमान. जाने मन जाने जान. तुमने मुझे देखा. जलवे तुम भी न कहां पहुंचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुंचे. खत्म से हो गए रास्ते सब यहां, जाने मन जाने जान. तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन, थम गया आसमान. जाने मन जाने जान. तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन, थम गया आसमान. जाने मन जाने जान. तुमने मुझे देखा.
So, कब तक थे आपने और आगे क्या करा इन टाटाज?
पहले 3 साल समझो टाटाज में आई वॉज वर्किंग इन नेल्को, वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी था, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में मैं काम करता था, जहाँ पे टीवीज, रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, 2-in-1s, उन दिनों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज यू नो बेचते थे हम. सो वो 2.5 साल 3 साल आई वॉज इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस. ओके, मगर उसके बाद टाटाज CBS रिकॉर्ड्स के साथ जुड़ के दे वर स्टार्टिंग अ म्यूजिक कंपनी इन इंडिया. उन दिनों में आई थिंक देयर वाज ओनली HMV जो आज सारेगामा बुलाते हैं, और एक म्यूजिक इंडिया था जो अभी म्यूजिक यूनिवर्सल म्यूजिक है, और कोई म्यूजिक कंपनीज थे ही नहीं उस टाइम. एंड आई थिंक मेजर म्यूजिक कंपनी CBS रिकॉर्ड्स, जो उस टाइम टाटा का ही कंपनी था, वो ही एक एंट्री कर रहा था इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. तो जब मैंने सुना कि टाटा अपने ही ऑफिस में कुछ खुल रहा है म्यूजिक रिलेटेड, तो मैंने खुद जाके रतन टाटा से बात किया. एंड इसमें मैं यू नो इसके साथ ही मैं काम करना चाहता हूँ. सो ही सेड डेफिनेटली. सो ऐसा उसी वजह से आई गॉट इनटू द म्यूजिक बिजनेस. सो पहले आई वाज इन बेसिकली सेल्स. मैं बैंगलोर गया था. बैंगलोर और म्यूजिक इंडस्ट्री उन दिनों में बहुत छोटा था, ऐसा नहीं है, इट वाज नॉट अ वेरी बिग इंडस्ट्री. और हिंदी और इंग्लिश म्यूजिक का डिमांड, आई मीन इंग्लिश म्यूजिक का डिमांड बहुत कम था उस टाइम. मेनली कैसेट्स या रिकॉर्ड्स, LP रिकॉर्ड्स बिकते थे. दे वर आइदर रीजनल म्यूजिक या हिंदी फिल्म गाने बिकते थे. तो उस टाइम द म्यूजिक इंडस्ट्री वाज सॉल्व. तो मैं पूरा कर्नाटका और केरला संभालता था सेल्स. सो वहीं से मुझे एक्सपीरियंस मिला म्यूजिक इंडस्ट्री में, वहीं से पूरा जानकारी हुआ. एक गाना सुनना एज अ कस्टमर, एज अ म्यूजिक लवर, एक अलग चीज होती है. ओके, बट टू सिट डाउन एंड देन मार्केट इट एंड डिसाइड क्या बिकने वाला है या कैसा बेच सकते हैं, और बाकी लोगों का डिमांड और इंटरेस्ट समझना, दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जब आप म्यूजिक इंडस्ट्री में एज एन इंडस्ट्री जब आप वहां पे काम करते हैं. सो देन आप यू डोंट लुक एट योर ओन इंटरेस्ट, फिर आपको पूरा पब्लिक का इंटरेस्ट देखना है, कंज्यूमर इंटरेस्ट देखना है.
उस टाइम तो टेप्स पे बिकता था म्यूजिक.
टेप्स उस टाइम में बहुत बैड क्वालिटी थे. ओके, LP रिकॉर्ड्स पहले बिकता था राइट अप टू 82-83. प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स उस टाइम में आना शुरू हुआ था. ओके, और उन दिनों में भी कंपनी का कैसेट्स भी क्वालिटी वाज नॉट वेरी गुड, बट धीरे धीरे कैसेट क्वालिटी इंप्रूव्ड. LP रिकॉर्ड्स फिर फेड आउट हो गया.
वो महंगे भी तो थे कंपेयर्ड टू कैसेट्स. आई थिंक 10 गुना थे उसके प्राइस.
हाँ नहीं, कैसेट्स, ओरिजिनल कैसेट्स आई थिंक उन दिनों में 20-30 रुपए में बिकते थे. LP रिकॉर्ड 45 रुपए आई थिंक उनका प्राइस था. पायरेटेड कैसेट्स ऑफ कोर्स बहुत सस्ते, 8-10 रुपए में बिकते थे.
वो तो एक अलग ही स्टोरी है. ये मैग्ना साउंड क्या हुआ, आपने शुरू करा था?
नहीं, मैंने शुरू नहीं किया था.
एक बड़ी कंपनी थी जहाँ तक मुझे याद है.
क्या हुआ था कि कुछ सालों के बाद जब मैं CBS में काम कर रहा था, मुझे पूरा अच्छा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस मिल गया था म्यूजिक इंडस्ट्री में. बट फिर क्या हुआ, शशि गोपाल जी जो उस टाइम में CBS टाटाज ने अपना शेयर, CBS का शेयर एक प्राइवेट इंडिविजुअल को भेज दिया था, मिस्टर RV पंडित. ओके, तो टाटाज हैड मूव्ड आउट ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री. मेरा इंटरेस्ट स्टिल उसी टाइम म्यूजिक में ही था. तो मैं, मेरे पास एक ऑप्शन था, या तो टाटाज में वापस जाओ और कंटिन्यू इन CBS इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. तो मैंने सोचा कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में जाऊंगा. सो द कंपनी वॉज बॉट ओवर RV पंडित. और उन दिनों में सोनी म्यूजिक वॉज बाइंग CBS म्यूजिक इंटरनेशनली. ओके, वहां पे शशि गोपाल जी, ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. तो हमारी वही वहां पे काफी अच्छा जान पहचान हो गया था. और कुछ साल के बाद ही डिसाइडेड टू स्टार्ट मैग्ना साउंड. तो वो CBS छोड़ के वो मैग्ना साउंड शुरू किया. ही वॉज ऑल्सो एन एंटरप्रेनर, उनके घर से वी स्टार्टेड द कंपनी. और फिर मैं बैंगलोर से वापस बॉम्बे आया. उस टाइम में हम सब जुड़ गया. मैं, यू कैन से आई वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स शशि गोपाल के साथ. हम सब जुड़ के 5-6 लोग थे उस टाइम. सब जुड़ के वी स्टार्टेड मैग्ना साउंड. एंड मैग्ना साउंड एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल कंपनी बन गया था. उन दिनों में एक बहुत ट्रेंड सेटिंग कंपनी थी. यू नो, जैसा आई सेड पहले 2-3 म्यूजिक कंपनीज थी पहले. इस टाइम तक ऑफकोर्स आई थिंक T-Series यू नो आ गया था मार्केट में. आई थिंक टिप्स और वीनस भी आ रहे थे मार्केट में. बट मैग्ना साउंड एक बहुत इंटरनेशनल फ्लेवर्ड कंपनी था. जैसे उनका टाई अप था वॉर्नर रिकॉर्ड्स के साथ. सो इंग्लिश म्यूजिक काफी मार्केट करते थे. और वहां पे हमने हिंदी पॉप शुरू की थी, जो उन दिनों में सिर्फ इंटरनेशनल क्या कहते हैं फिल्म म्यूजिक बिकता था, हिंदी फिल्म म्यूजिक बिकता था. देन वी डिसाइडेड वी विल स्टार्ट हिंदी पॉप म्यूजिक. तो इनिशियली हमने बाबा सहगल के साथ एक्सपेरिमेंट किया. तो बाबा सहगल चल गया. उसके बाद अलीशा और दिलेर मेहंदी. तो ये पूरा जो पॉप इंडस्ट्री था जो तब तक यू नो बना नहीं था, इट स्टार्टेड टेकिंग ऑफ मैग्ना साउंड के साथ. और मेरा तो हमेशा यू नो ये इच्छा था कि मैं खुद अपना कुछ बिजनेस शुरू करूं. ओके उस टाइम मेरा उम्र वाज ओनली आई थिंक 30 या 30 या 31 इयर्स का उम्र था. तो मैं चाहता था कि मैं भी कुछ अपने आप करूं और मेरा तो इंटरेस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री में ही था. तो तब मैंने मैग्नसाउंड छोड़ के आई स्टार्टेड क्रिसेंडो म्यूजिक. और मेरे जेब में बिल्कुल कुछ पैसा नहीं था. ओके मेरे आई थिंक बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया था जो मेरा 2 महीने का रेंट के लिए काफी था. मगर आई डोंट नो यू नो आई थिंक जब व्हेन यू आर डिटरमिन्ड टू स्टार्ट समथिंग तो चल जाता है. आई वाज लकी आल्सो म्यूजिक इंडस्ट्री उस टाइम में बूम होने वाला था. यू नो तो कहते हैं इफ यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एवरीथिंग गोज वेल. तो मैंने क्रिसेंडो शुरू किया. थोड़ा स्ट्रगल था इनिशियल स्टेजेस में. यू नो एक छोटा ऑफिस था वहां से धीरे 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 हम मतलब बिजनेस बढ़ाते गया. देन एट
क्रिसेंडो पे आते हैं. एक गाना सुन ले.
जैसे उजली किरण जैसे वन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया.
अभी बताइए क्रिसेंडो की हिस्ट्री और ये जो आप बता रहे हैं कि आपने खुद का शुरू करा।
हाँ तो बिल्कुल, मैंने आई थिंक मैं 31 इयर्स का था, मैंने रिस्क लिया, लोग कहते हैं अच्छा नौकरी छोड़ के रिस्क लेना, मगर हाँ मगर मैं मेरा दिमाग में वही था कुछ करना है तो यू नो अर्ली एज में करना चाहिए, बाद में 50 साल होने के बाद पछताना नहीं चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो मुझे भी आई मीन मैं काफी डिटरमिंड था कि मैं अच्छा बिजनेस शुरू करूं, मगर मुझे भी इतना मेरे पास इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी। यू नो
मेरे ख्याल से एक टाइम पर तो इंडिया की बिगेस्ट बन गई थी,
वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वॉन्ट से बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब आई कैन से टॉप 5 कंपनीज में वी वर वन ऑफ देम। एंड सो लाइक सर काफी मेहनत किया हम लोगों ने, काफी रिस्क लिए, धीरे धीरे कंपनी का यू नो ब्रांड रिकग्निशन आ गया मार्केट में। 8-10 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में ही था इससे पहले, तो काफी डीलर्स ऑल ओवर द कंट्री डीलर्स मुझे जानते थे, मैन्युफैक्चरर्स मुझे सपोर्ट किया, सो आई थिंक धीरे धीरे द कंपनी स्टार्टेड डूइंग वेल। फिर भी इट वॉज अ बिग स्ट्रगल, ऐसा नहीं था कि यू नो बिजनेस ओवरनाइट चल गया, बट उस टाइम में मुझे पता चला कि BMG जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल म्यूजिक कंपनी है,
ब्रिटिश म्यूजिक ग्रुप,
इट्स अ जर्मन कंपनी, जर्मन कंपनी है, बर्टल्समैन म्यूजिक ग्रुप,
बर्टल्समैन,
हाँ जी,
राइट राइट।
सो दैट टाइम मुझे मालूम पड़ा कि वो यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडियन मार्केट वाज ओपनिंग अप उस टाइम में, इकोनॉमी खुल रहा था और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हो रहे थे कि फॉरेन कंपनीज कैन कम एज पार्टनर्स इन इंडिया। तो मैं ऐसे ही विदाउट रियली थिंकिंग, मैं उनका जो हांगकांग बेस्ड वाइस प्रेसिडेंट था उनको मैं थोड़ा बहुत मेरा जान पहचान था उनके साथ, ओके, मैंने एक दो बार उनसे पहले मिल चुका था। तो ऐसे ही मैंने उसको एक लेटर भेजा, फैक्स भेजा, उन दिनों में फैक्स का जमाना था, तो आई जस्ट Never expected कि कुछ होगा, ओके, मेरी कंपनी बहुत छोटी थी, 7-8 लोग मेरे पास काम कर रहे थे, एक छोटा ऑफिस था, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, there was nothing, फिर भी मैंने एक फैक्स भेजा and I said you know कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, छोटी कंपनी है, मगर आप कुछ हमारे साथ कुछ करना चाहेंगे तो we'd be interested, ओके, तो मुझे एक जवाब मिला, ओके, सेड इत्तेफाक से हमारा आदमी वहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट वीक ऑस्ट्रेलिया से,
मिलेंगे,
हाँ वो आपसे मिलेंगे, ओके, सो आई से ठीक है मिल लेंगे। फिर भी मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं था क्योंकि मेरा कंपनी बहुत ही छोटा था और यहाँ पे उनके लिए बहुत ऑप्शंस थे टाई अप के लिए, टाइम्स म्यूजिक आ रहा था मार्केट में उस टाइम, टी सीरीज एंड वीनस एंड टिप्स एस्टैब्लिश्ड कंपनीज थे, मैग्नस राउंड भी एस्टैब्लिश्ड कंपनी ही था उस टाइम, सो आई हैड नो ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बट शायद मेरा लक अच्छा था उस टाइम, ही वॉज अ यंग ऑस्ट्रेलियन जो आया था, एक हमारे ऑफिस आया था, यू नो मेरा कुछ फैंसी ग्लैमरस ऑफिस था ही नहीं, ओके, मैंने बैंड्रा स्टेशन में, बैंड्रा में ऑफिस था, मैं बैंड्रा स्टेशन से कटिंग चाय मंगवाया उसके लिए और एक गंदी सी बिरयानी जो स्टेशन के सामने मिल रहा था वो मैंने उसको खिलाया, मगर वहां से अपनी दोस्ती शुरू हुई उसके साथ। तो वो 7 दिन के लिए थे बॉम्बे में और वो बाकी सब म्यूजिक कंपनी से मिले उस टाइम।
BMG क्रेसेंडो का हमारा भी एक छोटा सा हिस्ट्री है,
ओके,
मेरी वाइफ सिंगर है,
ओ,
भजन सिंगर,
अच्छा,
उनका फर्स्ट कैसेट या सीडी मुझे वो याद ध्यान नहीं है, पुरुषोत्तम दास जलोटा के साथ बना था,
अच्छा,
और वो BMG क्रेसेंडो ने बनाया,
ओ माय, ये तो
मैं सोच रहा था कि मतलब नाम इतना फेमिलियर क्यों है,
अच्छा अच्छा,
फिर वाइफ को बोला तुम भूल गए,
अरे
BMG क्रेसेंडो में ही फर्स्ट निकला था,
अरे दैट इज एन अमेजिंग कोइंसिडेंस।
तो क्रेसेंडो फिर बीएमजी साहब का कॉन्डियो हो गया कोलैबोरेशन।
हाँ, तो उस मीटिंग के बाद यू नो आई थिंक उन्होंने ऑफर दिया था मुझे, दे सेड हम आपके साथ काम करना चाहेंगे मगर हम आपका कंपनी का 51% शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। और मुझे तो कोई इतराज नहीं था, आई सेड इट्स अ गुड आइडिया बिकॉज इफ यू ज्वाइन हैंड्स विद अ गुड कंपनी इट्स बेटर। तो उस टाइम में ये गवर्नमेंट अप्रूवल हमको लेना पड़ा थोड़ा,
अच्छा
यू नो, मगर अभी इंडियन इकोनॉमी वॉज जस्ट ओपनिंग अप, आई थिंक एक साल लगा था हमें वो कोलैबोरेशन को का अप्रूवल मिलना फ्रॉम द गवर्नमेंट। मगर एक बार जब हो गया फिर तो कंपनी तो एक दूसरा बड़ा एक लेवल पे ही चला गया बिकॉज बीएमजी के पास बहुत अच्छा इंटरनेशनल म्यूजिक का कैटलॉग था और मेरा पूरा एक्सपीरियंस था यू नो इन द पॉप इंडस्ट्री एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल, सो द कॉम्बिनेशन वॉज वेरी गुड। और एक वन गुड थिंग बीएमजी के साथ वो हमें वो कभी इंटरफेयर नहीं किया,
अच्छा
यू नो इन व्हाट वी वर डूइंग। एक बिजनेस प्लान बनता था हर साल, अभी उस हिसाब से हमारा बजट सब बन चुके थे, यू हैव टू परफॉर्म लाइक अ कॉर्पोरेट। तो वी मेरा तो आई थिंक सक्सेस स्टोरीज ये है लकी अली, मिक्का, मोहित चौहान, अनाइडा, मेहनाज, नितिन बाली, सुखबीर, अच्छा। काफी पॉप आर्टिस्ट बहुत सक्सेसफुल बने थे उस टाइम थ्रू बीएमजी क्रेसेंडो। हमने काफी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, लोग हमें नॉर्मली पॉप म्यूजिक की वजह से जानते हैं, ओके, बिकॉज उस टाइम पॉप म्यूजिक वॉज अ वेरी बिग क्रेज, यू नो एमटीवी आया था मार्केट में, चैनल भी, बट लोगों को यह मालूम नहीं है कि मैंने बहुत हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक, साउथ इंडियन म्यूजिक, बंगाली म्यूजिक, हर किस्म का म्यूजिक हम मार्केट करते थे, ओके, मगर टीवी पे तो म्यूजिक वीडियोस दिखते थे, सो एवरीबॉडी नोज बीएमजी क्रेसेंडो फॉर द म्यूजिक वीडियोस, बट हमने काफी अलग किस्म के म्यूजिक हम लोगों ने मार्केट की थी उस टाइम।
ये बताइए कि अभी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बहुत सुनते हैं कि ऊंचा और नीच बहुत हो रही है और काफी कुछ मतलब है ना पायरेसी के कारण, फ्री म्यूजिक के कारण, मतलब है ना कंपनीज का बिकता नहीं है म्यूजिक।
बिल्कुल, यू कैन से ऑलमोस्ट 90% अभी म्यूजिक का मार्केट कन्वेंशनली अगर हम बात करें, यू नो पहले कैसेट्स और सीडीज लाखों लाखों में बिकते थे और इस वजह से म्यूजिक कंपनीज चलते थे, यू नो सेल होता था, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता था, उसके ऊपर यू नो आप कैसेट्स या सीडीज या रिकॉर्ड्स जो भी आप बेचते थे और इस वजह से हम पैसा भी कमाते थे, कभी कभी हिट्स लॉसेस भी चलते थे, कभी कभी हिट्स होते थे, एंड वी यूज्ड टू मेक प्रॉफिट्स, एक अच्छा बिजनेस मॉडल था हमारे लिए। मगर मिड 2000 से ये डिजिटल इरा शुरू हुआ था धीरे धीरे, और पहले बहुत धीरे धीरे आ रहा था मगर उसके बाद यू नो बहुत जल्द से जल्द पूरा इंडस्ट्री चेंज हो गया, कैसेट्स और सीडीज बिल्कुल बिकना बंद हो गया था, एंड एक पीरियड था 4-5 साल के लिए वेर कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों
क्या
को
क्या करना चाहिए,
ना तो कैसेट सीडीज बिक रहे हैं, कुछ डिजिटल में कुछ आ रहा है नया नया, और वो बहुत वो तो सब पहले पायरेट साइट्स ही थे डिजिटल पे, ओके, तो कमाई ऑलमोस्ट जीरो हो गया था एंड ऑल म्यूजिक कंपनीज, मेरा भी यू नो बहुत लॉसेस हुआ था, मतलब हमारा कंपनी तो वर्चुअली ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था,
अच्छा,
उस टाइम, एंड बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज भी यू नो उस 5-8 साल में बड़े बड़े जायंट्स भी बंद हो गए, मैग्ना साउंड भी यू नो बंद हुआ, और जो म्यूजिक कंपनीज रह गए थे ओके जो इंडिया में अभी भी रह चुके हैं, अभी भी हैं मगर इतना एक्टिव नहीं थे, एक्टिव नहीं है जैसे वो पहले होते थे, यू नो, सो वो पूरा मतलब यू कैन से फ्रॉम 2005 टू 2012 ओके एक ऑलमोस्ट यू नो एक क्या कहते हैं सुनामी का पीरियड था, यू नो वेयर व्हेन म्यूजिक सेल्स बिल्कुल बंद हो गए थे एंड इवन म्यूजिक चैनल्स लाइक एमटीवी चैनल भी वो सब यू नो दे लॉस्ट इंटरेस्ट इन म्यूजिक वीडियोस एंड ऑल दैट। अभी धीरे धीरे ये डिजिटल इरा सॉर्ट ऑफ
प्ले आउट हो गया,
अभी हो रहा है, फिर भी कमाई इतना है ही नहीं, यू नो अभी यू हैव कंपनीज लाइक सावन एंड यू नो गाना जो स्ट्रीमिंग से हमें थोड़ा पैसा मिलता है, यूट्यूब हमको थोड़ा पैसा देता है, मगर अगर हम देखेंगे क्या कॉस्ट यू नो हम इन्वेस्ट करते हैं एक गाना बनाने के लिए, एक गाने की बात यार एक एल्बम के लिए, सिंगर को प्रमोट करना, मार्केटिंग कॉस्ट, इतने सारे खर्चे होते हैं, वो उसका 10% वही निकलना ही आता है, यू नो, फ्रॉम डिजिटल।
कैसे चलती है फिर इंडस्ट्री?
तो वही तो, इसलिए इंडस्ट्री एक्चुअली एक्टिव नहीं है। जो जो पहले जो सॉलिड प्लेयर्स हैं जिनके पास बड़ा कैटलॉग है, जैसे सारेगामा और यू नो यूनिवर्सल म्यूजिक, तो वो अपना पुराना म्यूजिक से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ओके, नया म्यूजिक में नहीं कमाते हैं, इसलिए वो नया म्यूजिक, नए रिकॉर्डिंग्स करते ही नहीं है, या तो वो अपने पूरा रॉयल्टीज, पुराना रॉयल्टीज यू नो व्हिच कम फ्रॉम डिजिटल, वो यू नो उसमें से वो सर्वाइव करते हैं, और या कवर वर्जंस के राइट्स बेचते हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स को, वहां से उनको काफी पैसा मिलता है। और टी सीरीज और जी वो ज्यादा मीडिया बार्टरिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिक से यू नो एक नया गाना से इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं। ओके, दे हैव अ डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर जहां से वो अपना म्यूजिक जो मीडिया प्रमोशंस वो देते हैं प्रोड्यूसर को, इस वजह से उनको म्यूजिक राइट्स सॉर्ट ऑफ मिलता है।
एक गाना सुन ले।
तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है,
नहीं तो चराहों से ना जा रही थी, तुम आ गए हो।
कुछ आपने डाइवर्सिफिकेशन करा फिर?
हाँ, तो अभी अभी हम क्या कर रहे हैं कि म्यूजिक तो हम अभी भी रिलीज करते हैं, ये अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है, मेनली ऑन यूट्यूब एंड डिजिटल फॉर्मेट्स, मगर वहाँ पे हम लाइक आई सेड मोर सेंटिमेंटल रीजंस के लिए हम वहाँ पे म्यूजिक रिलीज करते हैं, कमाई नहीं आती है वहाँ से. तो अभी हम थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अभी मार्केट चेंज हो गया है. वी हैव ऑल्सो हम अभी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, छोटी फिल्म है, बड़ी फिल्म मेन स्ट्रीम अब अभी आए नहीं मार्केट में, बट उन दिनों में भी क्रिसेंडो वाज ऑलवेज एन एक्सपेरिमेंटल कंपनी. ओके, हम कभी बड़े बड़े सिंगर्स या बड़े स्टार्स के पीछे नहीं भागते थे. हमारा विजन ये था कि हम खुद स्टार्स बनाएंगे. ओके, और उस टाइम में हम सक्सेसफुल रहे. आई नो फिल्म इंडस्ट्री और मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट बिजनेस है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फिर भी मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करने का कोशिश कर रहा हूँ. हम नए आर्टिस्ट को लेके स्मार्ट इंटेलिजेंट फिल्म बना रहे हैं. धीरे धीरे हम होपफुली एक दो सक्सेस आएंगे तो वी कैन गो इन फॉर बिगर फिल्म्स.
कब रिलीज होगी फिल्म?
एक फिल्म तो नवंबर में रिलीज हो रही है, इट्स अ हॉरर फिल्म. ओके,
बट इज हॉरर का आजकल बहुत सुन रहा हूं मैं. मार्केट है हॉरर, कौन जाता है देखने?
नहीं, एक्चुअली फॉर टीनेजर्स, यू नो हॉरर इज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट टीनेजर्स. हां, एक सॉर्ट ऑफ सेट मार्केट है. ओके, कभी इट कैन नेवर बी एक करण जौहर जैसा फिल्म कभी नहीं बन सकता, बट एक छोटा ऑडियंस है, नीश ऑडियंस जो कहते हैं, वो कुछ भी हॉरर फिल्म देखने के लिए तैयार है.
ये जो आपने बात बोली कि है ना सारा डिजिटल हो गया, ये सब हो गया, पायरेसी की भी बात करें अगर, तो अब 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि है ना काफी रिवर्सल हो रहा है. ये IPRS सोसाइटी ऐसे 3-4 बॉडीज हैं जो काफी स्ट्रांगली क्लैम डाउन कर रहे हैं ऑन पायरेसी, एंड उनको रेवेन्यूज भी अच्छे आने लग गए, आर्टिस्ट को भी रेवेन्यू आने लग गए.
या आई वुड से डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं मार्केट में. डिजिटल का एक ये फायदा है कि वहाँ पे भी अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं, वेब सीरीज बना सकते हैं, तो इस पे भी हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं. बट एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न्ड, एक पॉजिटिव ट्रेंड है. ओके, मगर मेरे ख्याल में 5 साल और 5-6 साल और लगेगा बिफोर वी कैन एक्चुअली कंट्रोल एवरीथिंग, यू नो. सो देयर इज ऑलवेज होप.
थोड़ा शिफ्ट करते हैं. इंडिया में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस करियर बनाने के लिए म्यूजिक में कुछ है यहाँ पे, या सब ऐसे नेचुरल वे में ही हो जाता है?
नहीं, आई थिंक कोई ऐसा,
जैसे जेजू स्कूल ऑफ आर्ट्स है, दैट इज फॉर आर्टिस्ट, ये म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए क्या है?
आई थिंक ऐसा जैसे विदेशी, यू नो, इन अमेरिका यू हैव बिग इंस्टीट्यूट्स लाइक बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है. आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया में ऐसा कुछ उस लेवल का है नहीं. काफी छोटे या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है. आई थिंक AR रहमान ने कुछ शुरू किया है, और दिल्ली में काफी इंस्टीट्यूट्स हैं जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिखाते हैं. ऐसे देयर आर स्मॉलर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस व्हिच टीच म्यूजिक.
नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम. नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम. न पिए वो क्या जाने, पीते हैं क्यों हम दीवाने यार. जब से हमने पीना सीखा, जीना सीखा, मरना सीखा यार. जो न पिए वो क्या जाने, पीते हैं क्यों हम दीवाने यार. जब से हमने पीना सीखा, जीना सीखा, मरना सीखा यार. ओ हम जब यूं नशे में डगमगाने लग गए, हो दिल की बेचैनी को आया थोड़ा सारा नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा क्या मैं गम का मारा नशे में आलम है सारा यार। किसी को दौलत का नशा, कहीं मोहब्बत का नशा यार। हो कह कर है शराबी सब पुकारे अब मुझे, हो सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम, जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर।
आप यंगस्टर्स को क्या राय देंगे जिसको म्यूजिक का शौक है? हाँ। वो इंडस्ट्री में जाए या नहीं जाए, या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसा करियर?
नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर वो यंगस्टर्स नहीं जाएंगे तो हमारे लिए म्यूजिक बनना बंद हो जाएगा। और एक बात है कि म्यूजिक बनाने के लिए देर यू नो लाखों लोग तैयार है म्यूजिक बनाने के लिए, और म्यूजिक सुनने के लिए करोड़ों
है।
ओके, सो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि म्यूजिक का मार्केट है नहीं। जब तक इंटरेस्ट है म्यूजिक में, उसका एक मार्केट रहेगा है और करियर बन सकता है। बट इट इज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस। आजकल सब बिजनेस कॉम्पिटिटिव है। एक एक्टर बनना आसान नहीं है, एक लॉयर बनना आसान नहीं है, यू नो कुछ भी करना है, कॉम्पिटिशन है, कोई भी फील्ड में जो है कॉम्पिटिशन है। मगर कोशिश के बिना कुछ होता नहीं है, डेडिकेशन होना चाहिए, यू नो। सो आई थिंक इट्स अ गुड कैरियर, म्यूजिक अभी भी एक अच्छा कैरियर है। इनफैक्ट आई थिंक अगर आप 20-25 साल 30 साल पहले के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, अभी म्यूजिक इज अ बेटर कैरियर।
बेटर है क्यों? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी हो गई है।
हाँ बिल्कुल,
और होते जा रही है।
हाँ,
साथ साथ में म्यूजिक भी चल रहा होगा।
नहीं, एब्सोल्युटली। सिर्फ म्यूजिक के बिना कुछ नहीं चल सकता है। म्यूजिक इज नीडेड एवरीवेयर। फिल्म बनाओ या एक बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना, एक डिजिटल फिल्म के लिए उसके लिए आपको म्यूजिक की जरूरत है। एक टेलीविजन सीरियल चल रहा है उसके लिए भी म्यूजिक की जरूरत है। सो म्यूजिक का जरूरत हर जगह है।
फाइनल एक क्वेश्चन है, क्या अलग अलग डिसिप्लिन है म्यूजिक में? वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस क्या कितना है इंडिया में?
आई थिंक वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस अनडाउटेडली बहुत है। ओके, अगर आप यू लुक एट सो मेनी म्यूजिक कंपोजर्स टुडे, जैसा शंकर एहसान लॉय एंड काफी, आई मीन एवरीबॉडी, यू टेक प्रीतम और एनीबॉडी, वो सब वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस है अपना म्यूजिक।
हमने लेस्ली लुईस को भी इंटरव्यू करा था यहां।
हाँ, और इफ यू लुक एट इट, इवन आरडी बर्मन, वेस्टर्न म्यूजिक आरडी बर्मन का म्यूजिक में बहुत इन्फ्लुएंस किया था उस टाइम में। बप्पी लहरी को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। सो वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है। ओके, बट एक्चुअली क्या हुआ है, इंडियन म्यूजिक एक अच्छी चीज ये है कि बहुत इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक हैव ऑलवेज बीन ब्लेंडेड। इसलिए अगर हम बॉलीवुड में भी देखें या अपना क्या कहते हैं पॉप म्यूजिक में भी देखें, एक अलग किस्म का म्यूजिक बन जाता है, यू नो, व्हिच इज अ काइंड ऑफ ब्लेंड ऑफ बोथ कल्चर्स।
कुछ अगर मिस करा हो इंडस्ट्री के बारे में, आपके बारे में, तो आप ही बताइए।
क्या बोलूं, आई थिंक एक छोटा रेडियो इंटरव्यू में ना, यू नो, मेरा हिस्ट्री के बारे में बोलना है बहुत मुश्किल है। आई थिंक जितना मैं कवर कर सकता था मैंने कवर कर दिया। ओवरऑल आई थिंक इन द एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक इंडस्ट्री, आई थिंक एक मेरे हिसाब से देयर इज अ लॉट ऑफ होप एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस। ओके, क्रिएटिव है एंड यंग पीपल यू नो शुड एंटर इट इफ दे वांट टू, इफ दे हैव इट, इफ दे जेन्युइनली हैव एन इंटरेस्ट इन, यू नो। मुझे स्टार बनना है, जल्दी पैसा बनाना है, वो नहीं चलने वाला, यू नो, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस।
हमारे साथ हैं सुरेश थॉमस जी, CMD क्रेसेंडो म्यूजिक। मैं विकास मित्तसेन, चेयरमैन नजारा टेक्नोलॉजीज, फाउंडर प्रेसिडेंट IBG। थैंक यू सुरेश जी हमारे साथ आए।
थैंक यू जी, थैंक
यू। हमारे दर्शकों को जरूर ये आज का इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा।
थैंक यू सो मच।
हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले।
दशमलव एक मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छूलो आसमान में क्रिसेंडो म्यूजिक और प्रोडक्शंस के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुरेश थॉमस से की गई, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज एवं इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिटरसेन की बातचीत। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। सहयोग सृष्टि जाधव एवं कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।